நமோ அர்ஹந்தாணம், நமோ சித்தாணம், நமோ ஆயிரியாணம், நமோ வஜ்ராயாணம், நமோ
त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतों को नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अमृत महोत्सव के केंद्र बिंदु आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज श्री को विशेष नमोस्तु। भारत के सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमिष्ठियों को नमोस्तु। साक्षात विराजमान मुनि श्री सुयश गुप्त महाराज श्री को नमोस्तु। सभी आरिका माता जी गणनीय आरिका माता जियों को वंदामी। एलक्ष लक्ष लिखा माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। धवल जय धवल जीवकांड बारस अणुवेखा चारित्र पाहुड़ आदि विभिन्न ग्रंथों में जिन शासन में जो मुनि धर्म का छोटा भाई है श्रावक धर्म, उसके 11 विभागों का वर्णन करने वाली एक गाथा आती है। दंसन वयसामाय ओसह सचित्राय भत्तेय ब्रह्मारंभ परिग्रह अणुमण उद्दिठ देश विरदोय। इसका पाठांतर भी आता है, प्रतिक्रमण श्रावक प्रतिक्रमण में भी ये गाथा आती है और अनेक ग्रंथों की टीकाओं में ये गाथा उद्धृत पाई जाती है। अणुमण उद्दिठ देश विर दे दे, ऐसा भी एक पाठ है। एते देश विरता, पूर्व सत्र में अपन ने समझा था कि विरत और संयत इन दोनों में क्या अंतर है। जिन्होंने व्रतों को अंगीकार किया वो विरत है, और व्रतों को अंगीकार करने के साथ साथ जिन्होंने समितियों का भी पालन प्रारंभ कर दिया वो संयत है। तो पूर्व सत्र में अपन ने उस पंक्ति को भी देखा था जहाँ पर आचार्य चामुंड राय ने चरित्रसार ग्रंथ में लिखा अणुव्रति महाव्रति नौ। दोनों प्रकार के व्रति होते हैं, अणुव्रति और महाव्रति। ये दोनों समिति युक्त हो संयमिन हो भवतः, जब समितियों से युक्त होते हैं तब संयमी हो जाते हैं। समितिम विना विरतो, और समिति से रहित होते हैं तो विरत होते हैं। तो इसी वक्त अपन ने श्रावक धर्म में उसकी चर्चा ऐसी की थी कि 10 प्रतिमाधारी जो श्रावक होते हैं वो घर पर रह सकते हैं, भले ही घर और बैंक अकाउंट और बाकी जितने भी 10 प्रकार के परिग्रह हैं शास्त्रों में उनसे उनका नाम वो हटा लेते हैं। 9 प्रतिमा धारण करते हैं तो परिग्रहों से अपना नाम अलग कर लेते हैं, परिग्रह त्याग प्रतिमा होती है, लेकिन घर में रह सकते हैं क्योंकि घर उन्हीं का और उनके परिवार वाले उनको रहने दे रहे हैं तो घर पे रह सकते हैं। बस इतना है कि वो सांसारिक कार्यों में कोई परामर्श नहीं देंगे, 10 प्रतिमाधारी कोई कंसल्टेंसी नहीं करेंगे, कोई सुझाव नहीं देंगे, कोई मार्गदर्शन नहीं देंगे। तो 10 प्रतिमा में ये विशेषता होती है कि सब कुछ छूट चुका है, धनोपार्जन 8वीं प्रतिमा में छोड़ दिया, धन का संग्रह जो था उसको 9वीं प्रतिमा में छोड़ दिया, और 10म प्रतिमा में उन्होंने अपने परिवार वालों को अपने अनुभवी जीवन के परामर्श देना भी छोड़ दिया। अब वो कोई सुझाव भी नहीं देते कि हाँ वहाँ प्लॉट खरीद लेना और उनसे बात कर लेना और ऐसा कर लेना वैसा कर लेना और इस तरीके से काम करोगे तो तुम्हारा जल्दी निपट जाएगा। कोई सांसारिक कार्यों में कोई सलाह नहीं देते, न आरंभ के विषय में, न परिग्रहों के विषय में, न ऐहिक कर्मों में। ऐहिक कर्म का अर्थ विवाह आदि लौकिक कार्य, उन कार्यों में भी दशम प्रतिमाधारी वालों की कोई सम्मति नहीं होती, अनुमति नहीं होती, तो उनको अनुमति विरत कहते हैं। अब अनुमति विरत होने पर भी ईष्णा समिति की जहाँ तक बात आती है तो ईष्णा समिति के जो नियम बताए हैं उसमें 16 उद्गम दोष होते हैं, 16 उत्पादन दोष होते हैं। उद्गम दोष श्रावकों के कारण होते हैं, उत्पादन दोष साधु के कारण होते हैं, और 10 अशन दोष होते हैं जो भोजन सामग्री है उससे संबंधित दोष होते हैं, अथवा सामग्री को पकड़ने वाले कैसे हैं, वो व्यसनी आदिक तो नहीं है, अथवा उनके हाथ स्वच्छ है या नहीं है, और साथ में कुछ पुता तो नहीं है, कुछ लीपा तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वहाँ आप आटा बना करके उसन करके आ रहे हैं, वो हाथ में पूरे आटा छपा हुआ है, तो उसको भी वहाँ पर वर्जित किया गया है 10 अशन दोषों में। मदिरा पीने वाला है उससे भी वर्जित है आहार लेना, और 5 माह गर्भिणी है उससे भी आहार लेना वर्जित है, और ऐसे और भी जी पंचमासिका गर्भिणी, पंचमासिका का अर्थ 5 माह जिनके व्यतीत हो चुके हैं, वो आहार नहीं देंगे, और इस तरह और भी बहुत सारे नियम उसमें, वो 10 अशन दोषों में ये सारी बातें आती। इसके बाद ये कितने हो गए, 16 और 16 32 और 10 42 हो गए। 4 और दोष हैं, उसमें एक है अंगार दोष। अंगार दोष का अर्थ होता है जैसे अंगार पर आप जितनी भी धूप डालते हो वो सारी खप जाती है, तो अगर साधु को कोई वस्तु बड़ी स्वादिष्ट लग रही है तो पूरे बर्तन के बर्तन अगर लेने लग जाएं तो फिर उनको अंगार दोष लगता है। मान लो रबड़ी बनी है और फिर बड़े दिनों के बाद मिल रही है, तो फिर उसको अगर वो उसमें अंगार जैसी प्रवृत्ति करने लग जाए तो फिर उनको दोष लगता है, तो उस दोष से भी साधु अपने आप को बचा के रखते हैं। फिर एक धूम दोष भी होता है, जैसे कोई लकड़ी कोई पानी वानी डाल करके बुझाता है उसको, अग्नि को बुझाता है, तो फिर उसमें से भाप निकलती है, और अगर वो अपने आप कोई चीज़ बुझती है तो धुआं निकलता है। आप देखिएगा जब दीपक बुझते हैं तो कैसे धुआं निकलता है, और पूरे रूम में किसी को लगता है कि अरे ये कहाँ से गंदा रही ऐसे चेहरा बनाते हो, तो ये धूम है। यानी आहार कर लिया आपने, जठराग्नि शांत हो गई, जठराग्नि बुझ गई, अब धुआं निकाल रहे हो आप, श्रावकों पर नाराज हो रहे, उल्टी सीधी बातें सुना रहे उनको, क्या तुम लोग दिखाते हो और देते नहीं हो, ऐसे वैसे जो भी बातें हैं कुछ भी बोलते जा रहे हैं, डांट फाट कर रहे हैं, तो नहीं। ये अंगार नाम, अंगार दोष के बाद ये धूम नाम का दोष। फिर एक दोष और होता है संयोजना। संयोजना दोष में क्या होता है कि दाल एकदम गरम गरम है और भात एकदम ठंडा हो गया, तो वो न गरम ले सकते हैं दाल डायरेक्ट और न भात ठंडा ले सकते, इतना ठंडा है, तो फिर दोनों को मिक्स करके लेते हैं। उद्देश्य उसके तापमान को बदलना है, तो तापमान को बदलने के उद्देश्य से जो दो वस्तुओं का मिश्रण किया जाता है, संयोग किया जाता है, वो संयोजना नाम का दोष है। फिर एक दोष और है अप्रमाण दोष। अप्रमाण दोष क्या है, बोले कि ठोस भोजन से आधा पेट भरो, तरल भोजन से 3/4 कर दो, उसमें से 1/4 और बढ़ा लो और बाकी पेट खाली रखो, आहार के बाद अपन ऐसे पेट थोड़ा अंदर करके देखें, अगर अंदर ना हो तो समझना अप्रमाण दोष है। और इससे लाभ क्या है, तो बोले प्रमाद नहीं आता। प्रमाण पूर्वक आहार लेने पर प्रमाद नहीं आता। और आज इतनी शताब्दियों के बाद, इतने हजारों वर्ष कह सकते हैं अपन, क्योंकि कब वो वर्णन आ रहा है, कौन से ग्रंथ में आ रहा है, मूलाचार ग्रंथ में वर्णन है, 2000 साल लगभग हो गया। और आज वैज्ञानिकों ने ये बात स्वीकार कर ली कि ऐसा भोजन करने वाले बीमार नहीं पड़ते, कम से कम पेट की बीमारियों से बीमार नहीं होते। आप एक एक प्रयोग है कि यदि आपको भोजन संबंधी परेशानी हो रही है, डकारे आ रही है या फिर एसिडिटी हो रही है, तो आप भोजन को कम ज़्यादा करके देखो। हो सकता है आप कम ले रहे हो सकता है आप अधिक ले रहे हो। कम लेने वालों की जो बीमारी एनोरेक्सिया बल्मिया इसका नाम होता है मेडिकल में, कि उनको इच्छा ही नहीं होती ज़्यादा लेने की। और फिर ओवर ईटिंग को ग्लटनी बोलते हैं, उनको लगता ही नहीं कि, मतलब उनको लगता है कि कुछ खाली खाली है। खाते 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 आचार्य विद्यानंद महाराज ने एक किस्सा सुनाया था कि एक बार किसी विवाह में एक बहुत उच्च कोटि के हलवाई को बुलाया गया, और फिर उसको ऐसी सामग्री दी गई सेठ के द्वारा, उसने जीवन में पहली बार देखी थी कि इतनी उच्च कोटि की सामग्री मिल रही। वो जो चने थे, जो लड्डू उसको बनाने थे, चने अच्छी बड़ी साइज के काबुली चने, और फिर उसमें जो मिश्री थी वो भी A1 क्वालिटी की मिश्री थी, फिर उसमें और भी जितनी सामग्री होती, घी बिल्कुल वो गिरनारी गाय का टॉप क्वालिटी का घी था, एक से एक सामग्री, इलायची भी एकदम अच्छी श्रेष्ठ सबसे महंगी इलायची एकदम हरे रंग की, और फिर ऐसे पैकेट खोलो तो खुशबू आने लग जाए इलायची की। तो ऐसी सामग्री से जब उसको लड्डू बनाने दिए गए, बेटे की शादी थी और वो लड्डू बनाता चला गया, लेकिन उसके मन में ये था कि इतने स्वादिष्ट लड्डू अंत में मेरे लिए बचेंगे कि नहीं। तो फिर बनाता था, थालियां भरती जाती थी, लेकिन वो अंदर भी थोड़ा सा डालते जाता था। और ऐसा करते करते बीच में ऐसी स्थिति आ गई कि उसको होश ही नहीं रहा वो कितना खा गया। तो फिर उसको बैठते नहीं बन रहा था, तो बाकी और भी रसोई लोग दूसरी दूसरी चीज़ें बना रहे थे, तो उन्होंने सेठ को खबर दी कि इसको कुछ हो रहा है, आप कोई चिकित्सक का प्रबंध करिए, इसको कुछ परेशानी हो रही है। तो फिर देखा तो वो अंततः वो लेट गया। फिर वैद्य जी ने चिकित्सक को बुलाया कि भाई हमारे यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम है, कुछ अमंगल ना हो जाए, तो अच्छे चिकित्सक को बुलाया, एक अच्छे राजवैद्य को बुलाया, उसकी नाड़ी दिखलाई। नाड़ी देखी वैद्य ने, और वैद्य जी ने उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान दी एक तरफ से, ताकि दूसरी तरफ उनका चेहरा लोगों को सीरियस दिखे। और फिर उसने भी आंखों से समझ लिया कि वैद्य समझ गए मेरी चोरी वैद्य जी ने पकड़ ली। गुरु के सामने, वैद्य के सामने, माता पिता और शिक्षक के सामने कभी भी मायाचारी नहीं चलती। तो वैद्य जी सेठ जी से बोलते हैं कि सेठ जी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं एक छोटी सी गोली दूंगा और वो इनको लेना होगा, थोड़ा सा पानी उसके साथ ये गोली लेंगे सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। तो वो एकदम ऐसे ऐसे करने लगा, तो सेठ जी बोले कि क्यों, गोली खाने में तेरे को क्या तकलीफ हो रही है, आयुर्वेदिक खिला रहे हैं तेरे को, कोई ऐसे साइड इफेक्ट वाली गोली नहीं खिला रहे हैं। तो अंततः वो धीरे से वैद्य जी से बोलता है कि वैद्य जी क्या आप भी ज़बरदस्ती कर रहे हो, बोले अगर इतनी भी जगह बची होती तो मैं एक और खा लेता। तो ये प्रवृत्ति होती है कई बार, अप्रमाण दोष से बड़ी हानियां होती है, ओवर ईटिंग से कई बीमारियां होती है, और जब शरीर का वजन अतिरिक्त बढ़ जाता है तो फिर हड्डियों पर जोर पड़ता है, और उन लोगों की हड्डियां जल्दी ख़राब होती है जिनका वज़न अधिक होता है, और ओबेसिटी से होने वाले न जाने कितने और प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी तकलीफें होती है उससे। तो इसलिए आचार्यों ने कहा है कि सीमित भोजन करो, इतने में काम चल जाएगा। 32 अंग किर कवला मूलाचार्य की गाथा है, उसमें लिखा है कि चक्रवर्ती का भोजन 32 कौर होता है, और कौर का अर्थ उन्होंने रोटी के टुकड़े को कौर नहीं कहा, अथवा एक बार अंजलि में जो चीज़ आ रही है उसको उन्होंने कवल नहीं कहा। वो तो कवल व्यवहारिक भाषा में है कि एक कौर बना करके मुंह में डाल दिया, पर उसको कवल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कवल का एक निश्चित माप है, एक कवल में 1000 चावल के दाने होते हैं, तो 1000 चावल के दाने होते हैं उसको एक कवल कहते हैं। एक चक्रवर्ती का पूर्ण आहार, एक स्वस्थ मनुष्य का पूर्ण आहार 32 कवल प्रमाण होता है। तो उसका वजन अगर किसी को देखना हो तो देखवा देख भी सकता है। अगर आप लोग श्रोताओं में से किसी की ऐसी दुकान वगैरह हो तो वो देख सकते हैं कि 1000 चावल के दाने का कितना वजन होता है, और उसको 32 से गुणित कर देना, तो उतने वजन प्रमाण जो अनाज होता है वो मनुष्य का भोजन होता है। और चक्रवर्ती के लिए तो थोड़ा गरिष्ठ बनाते हैं, वो स्पेशल बनाते हैं, मतलब परिमाण इतना होता है उसका, अनुभाग जो है ना वो अलग होता है। ये हम बताना चाह रहे हैं कि वो जो शक्ति होती है ना भोजन का, जो रस होता है, चक्रवर्ती वाले भोजन में तो बहुत प्रद्युम्न ने खा लिया था श्री कृष्ण जी का लड्डू। वो सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण जी थे, नारायण उनके पिता थे, और कोई नहीं खा सकता था। वो लड्डू इतना गरिष्ठ था कि अगर उनकी पूरी सेना उसको अगर थोड़ा थोड़ा खा ले तो पचा ना पाए, और इनके अंदर ऐसी शक्तियाँ थी। तो ऐसे 46 दोष हैं, इन दोषों से रहित साधु का भोजन होता है। और वो ऐष्णा समिति संयत होने पर ही पाली जा सकती है, उसके पहले कुछ अंतराय कर सकते हैं, कुछ भोगोपभोग परिमाण कर सकते हैं, कुछ और नियम ले सकते हैं, ये सब संभव है। लेकिन ऐष्णा समिति जो है 46 दोषों से रहित भोजन, ये तो दीक्षा से पहले संभव नहीं है। कैसे संभव, आप विचार करें। अनुद्दिष्ट आहार होगा तब ऐष्णा समिति पलेगी, क्योंकि ऐष्णा समिति के 46 दोषों में पहला दोष उद्दिष्ट दोष है, और उद्दिष्ट दोष के 4 भेद हैं, उद्देश, समुद्देश, आदेश, समादेश। अब इनका निवारण कैसे संभव है गृहस्थ जीवन में, अथवा दीक्षा के पहले, संभव नहीं है। इसलिए देश संयत 11वीं प्रतिमाधारी है, देश विरत 10 प्रतिमाधारी है। पूरे पहले से लेकर 10 प्रतिमाधारी जो है वो सब देश विरत है। पर ऐसा अर्थ मत लेना कि 11वीं प्रतिमाधारी देश विरत नहीं है, ध्यान दे रहे आप, देश विरत नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं। देश विरत तो है ही, वो तो पहले जरूरी है देश विरत होना, फिर देश संयत समितियों का पालन करने लगे इस कारण से हो गए। अब देखिएगा इसमें पहली प्रतिमा में क्या होता है, बड़ा सुंदर वर्णन है शास्त्रों में, कई ग्रंथों में प्रतिमाओं का वर्णन है, कई ग्रंथों में मात्र 12 व्रतों का वर्णन है, जैसे तत्वार्थ सूत्र है, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, पूज्यपाद श्रावकाचार है, ऐसे कई ग्रंथों में मात्र 12 व्रतों का वर्णन है। उन्हीं 12 व्रतों का जो परिष्करण है, शुद्धिकरण है, वो 11 भागों में विभाजित 11 प्रतिमा है। अब इसमें कोई ऐसा समझ सकता है कि भाई कुछ आचार्यों के मत में 11 प्रतिमाओं का कोई अस्तित्व नहीं था, और कुछ आचार्यों के मत में 12 व्रत गौण थे, 11 प्रतिमाएँ प्रधान थी। तो ये कल्पना है, अपनी अपनी कल्पना है। वस्तुतः देखा जाए तो कुंदकुंद आचार्य महाराज ने 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया, समंतभद्र आचार्य महाराज ने 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया, वसुनंदी आचार्य महाराज ने, सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया है, फिर गुम्मटसार जीवकांड में 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है, धवल ग्रंथ में 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है, अनेक स्थानों पर 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है। इसलिए अपन इसको जिनशासन से पृथक नहीं कर सकते। 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा क्या है, उसका नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन का अर्थ यहां पर सम्यक दर्शन है, देव दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन में क्या करना होता है, तो बोले कि सम्यक दर्शन में देखो औपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन तो शुद्ध ही रहता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो हमेशा निरतिचार होता है। अब बचा क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, जो आज पंचम काल में कोई औपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन तो मिलना नहीं, और औपशमिक अगर हो भी जाए किसी को तो कम से कम उसको असंख्यात वर्ष का मिथ्या दृष्टि होना जरूरी है। पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल जिस जीव का मिथ्यात्व में व्यतीत होता है वही औपशमिक समय को प्राप्त कर सकता है, उद्वेलना काल जिसको कहते हैं, अन्यथा नहीं होता। तो खैर वो तो ठीक है, सैद्धांतिक बात है। अपन अभी देखें तो आज जो सम्यक दर्शन है वो सदोष सम्यक दर्शन है, उसमें चल, मलिन और अगाढ़ तीन प्रकार के दोष रहेंगे ही रहेंगे। तो आप पहली प्रतिमा में क्या करना है, आपको उन दोषों से बचने का प्रयत्न करना है, और अगर हो जाए दोष तो आपको प्रतिक्रमण करना है। दंसड़ परिमा है, शंका है, कंखा है, विधिगिंछा है, परपाषंड प्रसंसना है, पसंत हुए मनसा वसा कायण कदु कारुदेव किरंतु समण मणि द्वातस मिच्छा में दुक्कड़म। देवसी हो अचारो, देवसी का अतिचार हुआ हो, राई अचारो रात्रि का अतिचार हुआ हो। तो अगर ऐसी कोई प्रवृत्ति की है मैंने, मैंने अगर साधुओं के शरीर पर धूल जमी देख करके ग्लानी की है तो विधिगिंछा है तस् मिच्छा में दुक्कड़म, विधिगिंछा पूर्वक जो मुझे अतिचार हुआ है उसका मैं, हे प्रभु वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ऐसा होता है, ये सम्यक प्रकृति के उदय में चल, मलिन और अगाढ़ दोष आते हैं। शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्नों के हरता है, वासुपूज भगवान मंगल दोष के निवारक है, मुनि सुव्रत भगवान शनि दोष के निवारक है, कई प्रकार की बातें होती है। तो ये मिथ्यात्व नहीं है, ये मिथ्यात्व नहीं है, इनमें सत्यता होते हुए भी एक झुकाव ज्यादा है, एक के प्रति विशेष झुकाव है। तो उसको उन्होंने, आचार्यों ने मिथ्यात्व नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये चल दोष है, मल दोष है, अगाढ़ दोष है। तो ये दोष रहेंगे, पहली प्रतिमा में भी रहेंगे। ये पहला नियम है कि सम्यक दर्शन को आपको निरतिचार रखने का प्रयत्न करना है। फिर दूसरा क्या है, संसार शरीर और भोग। देखो छह प्रतिमा तक तो संतान प्राप्त हो सकती है, ऐसा प्रावधान है कि छह सत प्रतिमाधारी मनुष्य वैवाहिक है, उसका जीवन वैवाहिक जीवन है, तो फिर उसके यहाँ संतान उत्पन्न हो सकती है, वहाँ तक के मान्य है। फिर सप्तम प्रतिमा से आजीवन ब्रह्मचर्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पहली प्रतिमा में वो संसार शरीर और भोगों के बीच रह रहा है, तो प्रतिमाधारी होने के बाद पहले तो सम्यक दृष्टि था, व्रति नहीं था, अब प्रतिमाधारी हो गया तो अब उसको क्या करना होगा। तो आचार्य कहते हैं संसार शरीर भोग निर्विण्णा, संसार शरीर और भोगों के प्रति कुछ निर्वेद लाना होगा। अब निर्वेद जो है वो एकदम प्रकट वैराग्य रूप नहीं है, लेकिन एक उदासी, संसार शरीर और भोगों के प्रति जो पूर्व काल में आसक्ति थी। देखो अविरत सम्यक दृष्टि के लिए क्या लिखा, विषया सत्तो विषया सव्वारंभे सुबट्ट माणो वि मोह विलासो एसो सव्वम इति मण्यते हि। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथा आई, अपन ने पढ़ी थी नव गाथाएं, सम्यक दृष्टि का कैसा श्रद्धान होता है। तो उस समय उन्होंने, व्रति नहीं था वो, उस समय उसने अणुव्रत धारण नहीं किए थे, प्रतिमा धारण नहीं की थी, तब क्या दशा थी। तो बोले विषया सत्तो विषया सब आरंभे से वर्तमान हुए, हमेशा विषयों में उस आसक्ति बनी रहती थी, और सब प्रकार की आजीविका के उपक्रम करता था, आरंभ करता था, असी मिशि कृषि आदि सारी चीजें करता था, अभी भी कर रहा है। लेकिन अंतरंग उसकी श्रद्धा ये कहती थी कि ये सब मोह का प्रपंच है, और अंदर से उसको हे मानता था कि ये वस्तुतः मेरे श्रद्धान की गरिमा के अनुकूल नहीं है कि मैं विषय कषायों में लिप्त रहूं, पर क्या करूं, चारित्र मोह का ऐसा उदय है कि मैं अणुव्रत को धारण करने में भी असमर्थ हूं, चूंकि अप्रत्याख्यानावरण उदय में है। तो अप्रत्याख्यान का अर्थ होता है ईषत प्रत्याख्यान, ईषत प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है, देश विरत, तो उसमें भी मेरी शक्ति नहीं है। तो वो अंदर ही अंदर हे मानता था, त्याज्य मानता था, छोड़ता नहीं था। अब उसने क्या किया, पहली प्रतिमा में आकर के अब वो उदास रहने लगा, उनसे विषयों के प्रति उसकी आसक्ति चली गई, निर्विण्ण हो गया वो। और तीसरा नियम क्या है पहली प्रतिमा में, ये तो दो नियम हो गए पहली प्रतिमा के, कौन से दो नियम? एक तो सम्यक दर्शन को संभालना है, और दूसरा इनमें आसक्त नहीं हो, संसार शरीर भोगों में आसक्त नहीं होना। तीसरा ये था पंचगुरु चरण शरण, एक महत्व का प्रसंग है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि ये जिन शासन की चर्चा आ रही है, अब जिन शासन की इतनी चर्चा करते हुए भी एक शब्द और सुनने में आता है, जिन शासन रक्षक देव, ये कौन है? तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं पंच गुरु चरण शरण। आचार्य सामंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा है कि अब उसके ऊपर कोई भी विपत्ति आ जाए, ऐसा तो नहीं है कि प्रतिमाधारी पर विपत्ति नहीं आती है, वो कोई ऐसी धारणा बना भी ना ले कि भाई हम प्रतिमाधारी हो जाएंगे तो हमारे सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त हो जाएंगे? आपने पहले जो कर्ज लिया है उसको चुकाए बिना थोड़ी आप फ्री हो जाओगे। तो जो कर्म बांधे हैं उसका तो फल मुनियों तक को मिलता है, तो फिर प्रतिमा धारण करने पर कैसे छुटकारा हो जाएगा? तो आचार्य कहते हैं कि संकट आने पर पंच गुरु चरण शरण, पंच परमेष्टियों के चरण की ही शरण में जाना। अब संकट आने पर देव देवताओं के पास, शासन देवता आदि के पास अपने संकट निवारण करने के लिए कोई उपक्रम नहीं करना। संकट आ गया आपके ऊपर, लेकिन उनसे मदद नहीं लेना। वो यदि स्वेच्छा से मदद करें तो बात अलग है, अथवा किसी और के निमित्त से वो किसी को मदद कर दे वो बात अलग है, लेकिन स्वयं उनसे मदद नहीं लेना, ये बात कही है। आपदा कुलितोपि दर्शनिक तन्निवृत्त्यर्थम शासनादि देवतान शासन देवता दीन न भजते। आपदाओं से आकुलित होने पर भी उन आपत्तियों से निवृत्ति पाने के लिए पहली प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक शासन देवता आदिक को नहीं भजता। यदि उसके पास विद्या देवता है तो विद्या देवताओं का सहयोग ले सकता है, लेकिन शासन देवता जो जिन शासन से संबंध रखने वाले हैं उनका कार्य जिन शासन की रक्षा कर रहे हैं, तो उनसे अपनी विपत्ति का निवारण करने के लिए वो उनको नहीं भजता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर जो प्रतिमाधारी नहीं है वो भज लेता है, शासन देवताओं को भजता है अपने संकट का निवारण करने के लिए। जो प्रतिमाधारी नहीं है, सम्यक दृष्टि है, वो भजेगा क्या? तो इसका उत्तर वहीं लिखा हुआ है श्रावकाचार संग्रह के दूसरे भाग में कि पाक्षिकस्तु भजतीत्यपि एक शब्द ग्रहणम। एक शब्द जो मूल श्लोक में आया है उसको क्यों ग्रहण किया? एक शब्द की क्या आवश्यकता है? परमेष्ठि पदैक धीहि, ये पद है, परमेष्ठियों के चरण में ही एक बुद्धि है जिसकी, ऐसा प्रतिमाधारी श्रावक होता है पहली प्रतिमा से ही। तो ऐसी क्या बात है? तो बोले पाक्षिकस्तु भजतीत्यपि एक शब्द ग्रहण। इसका अर्थ ये हुआ कि पाक्षिक का अर्थ होता है एक सम्यक दृष्टि जीव है, वो पक्षधर है चारित्र का, चारित्र को धारण नहीं कर पा रहा है। तो बोलचाल में कहते हैं कि श्रावक है, अपन बोलचाल में सभी को श्रावक बोल देते ना, तो वैसा कहने मात्र को श्रावक है, वास्तविक श्रावक तो प्रतिमाधारी है। तो वो भज भी लेता है, कभी संकट आने पर शासन देवताओं से मदद की पुकार कर लेता है। अब इसमें दोष नहीं लगता क्या सम्यक दृष्टि को? और सम्यक दृष्टि कैसे रागी देवताओं के पास जाएगा? तो वो रागी देवताओं के पास राग की आराधना करने के लिए, असंयम का सम्मान करने के लिए नहीं जा रहा है, अपने संकट निवारण के लिए जा रहा है। और संकट निवारण के लिए आप, अब कोरोना की महामारी में हम क्या आपको पूरी कहानी सुनाएं? सबको पता है कि कोई नहीं पूछता कि डॉक्टर शाकाहारी है कि क्या है, पूछता है क्या कोई?
नहीं।
उसका इलाज ले लेते हो, और यहाँ शासन देवता से अगर मदद ले रहा है तो सम्यक दर्शन में कौन सा नुकसान हो गया? और वो शासन देवताओं को कोई देवशास्त्र गुरु जैसा आराध्य मानकर थोड़ी पूज रहा है, उनकी आराधना इसलिए थोड़ी कर रहा है। वो एक परिस्थिति ऐसी आई, जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते, जैसे एसपी को आपने सम्मान दे दिया, क्योंकि वो एक प्रबंधन की व्यवस्था होती है, वहाँ पंचकल्याणक उत्सव है, एसपी को स्टेज पर बुला करके सम्मानित कर दिया, तो उससे क्या होता है, वहाँ पर अनुशासन बना रहता है। इसी प्रकार अगर बड़े बड़े विधानों में और प्रतिष्ठा महोत्सवों में देवताओं को आमंत्रित करते हैं, तो उन देवताओं को आमंत्रित करने पर जो उपद्रवी देव हैं वो देखते हैं कि भाई यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, अपन यहाँ से दूर रहो, तो वो अपने आप उपद्रव नहीं करते, शांत रहते। ऐसी कई घटनाएं होती है। तो अविरत सम्यक दृष्टि संकट निवारण के लिए कदाचित इनको भज लेता है, लेकिन प्रतिमाधारी संकट निवारण के लिए नहीं भजता। एक बात, फिर अंतिम नियम क्या बताया उन्होंने, पहली प्रतिमा में अंतिम नियम क्या है, तत्व पथ गृह्य है। तत्व, तत्व तो सात है लेकिन तत्व पथ दो है, क्योंकि प्रवचन सार के अंत में एक संसार तत्व कहा है और एक मोक्ष तत्व है। ये दो ऐसे तत्व हैं जिनके पथ है, मार्ग है। बाकी तत्व, अजीव तत्व का क्या मार्ग है बताओ, जीव तत्व का क्या मार्ग है? तो सब तत्वों के पथ नहीं होते, लेकिन तत्व पथ, संसार पथ और मोक्ष पथ। तो तत्व पथ गृह्य लिखा है पहली प्रतिमाधारी को, अर्थात वो मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाला होता है, मोक्ष मार्गी होता है। तत्वार्थ वार्तिक में पहले सूत्र की टीका में जो तीसरा वार्तिक है वहां पर उन्होंने लिखा है कि जगन्य मोक्ष मार्गी होता है। जगन्य मोक्ष मार्गी कौन होता है? पहली प्रतिमाधारी। संयमाचरण की अपेक्षा से ये बात चल रही है, यानी व्रतियों की अपेक्षा से चर्चा हो रही है। कहीं कहीं पर संयम और विरति को उपचार से एक मान करके भी एक रूढ़ी के रूप में कहा जाता है। प्रतिमाधारियों का कौन सा गुणस्थान है तो बोले संयम असंयम, वो कहा जाता है। लेकिन जब अपन सूक्ष्म विभाग करते हैं, विवेचन करते हैं, तब फिर वो समिति और फिर व्रत विरति इनका भेद आ जाता है। तो ये चार नियम जिनके पास होते हैं, तत्व पथ गृह का अर्थ होता है मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाला, और मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने का अर्थ है पांच पापों का त्याग करना, पापक क्रिया निवृत्तिश्चारित्रम। चारित्र की क्या परिभाषा है? पापों, पाप क्रियाओं से निवृत्ति का नाम चारित्र है, यानी पाप का आजीवन त्याग करना। देश सर्वतोण महति, एक देश त्याग करो अणुव्रत के रूप में करो तो फिर वो अणुव्रत कहलाते हैं, और फिर पूरा त्याग कर दो तो महाव्रत कहलाते हैं। तो अणुव्रती हो जाता है, लेकिन अभी अणुव्रतों में दोष आते हैं, पहली प्रतिमा है तो उसमें अतिचार लग सकते हैं। दूसरी प्रतिमा में निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकम, शील सप्तकम चापि धारयते निश्चल्यो योऽसौ व्रतिनां मतव्रतिकः। रत्नकरण में पहली प्रतिमा के बाद वाली कारिका में ये लिखा कि जो अणुव्रतों को तो धारण कर रहा है, पहले से ही धारण किए हुए हैं, लेकिन अब दूसरी प्रतिमा में निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकम 25 अतिचारों का त्याग करता है। दूसरी प्रतिमा में वे ही अणुव्रत है, लेकिन पहली में सातिचार थे, अब निरतिचार हो गए। श्रोताओं को भारी तो नहीं लग रहा है विवेचन? 11 प्रतिमाओं का वर्णन है, थोड़ा सा परिचय हो जाए तो कभी काम आ सकती है, क्या पता कब कैसे दिन आ जाए जीवन में, काम आ सकती है। तो 12 व्रत धारण कर लिए, कौन से 12 व्रत? 5 अणुव्रत तो थे ही, अब 7 शील और धारण कर लिए, और जो 5 अणुव्रत थे उनको निरतिचार कर दिया। तो सात शील कौन से थे? तो सात शील का अर्थ यहां पर गुणव्रत और शिक्षा व्रत है। गुणव्रत कौन से होते हैं? दिग्व्रत, अनर्थ दंड विरति और भोगोपभोग परिमाण। ये गौतम गणधर द्वारा प्रतिपादित जो गुणव्रत है उनमें ये नाम आते हैं। आपने देखा होगा आपके बृहत प्रतिक्रमण में, सुदम में आउस संतो ऐसा आता ना, उसमें ये गुणव्रतों के नाम ये दिए हुए हैं। और शिक्षा व्रत में क्या आते हैं? तो शिक्षा व्रत में सामायिक, प्रोषदोपवास, अतिथि पूजा और संलेखना, ये चार शिक्षा व्रत है जो गौतम स्वामी से जो चले आए हैं, ये व्रत है मूल। फिर भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने अपने काल में श्रावकों की और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति को देखकर जानकर अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया उसमें थोड़ा सा अंतर भी मिलेगा, तो उसमें कोई बात नहीं है। आचार संहिता आचार्यों के अधीन होती है, तो कभी वैसी स्थिति में आचार्य महाराज अपना एक निर्णय देते हैं। तो दूसरी प्रतिमा हो गई गुणव्रत शिक्षा व्रत हो गया, निश्चल्य हो गया, बिल्कुल कोई शल्य नहीं रखी अब, माया मिथ्या निदान। माया मिथ्या तो पहले ही छूट गया था, सम्यक्त होते ही साथ मिथ्या तो छूट गया था, अब माया और निदान। शल्य का अर्थ इतनी मायाचारी है, इतनी आकांक्षा भोगों की न हो अंदर कि जो चुभन बन जाए। हम इतना सब कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं, जिन पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कुछ तो मिल जाए हमें, क्या ऐसे ही चलता रहेगा जीवन? तो ये जो आकांक्षा है ये कई बार बोझ बन जाती है, तो उससे रहित होना होता है प्रतिमाधारी को, दूसरी प्रतिमाधारी को, कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं, मिलना ना मिलना अपने ही कर्माधीन है, तो फिर क्यों कामना करके क्यों और नवीन कर्मों का बंध बांधे, क्यों ऋणी बने? फिर तीसरी प्रतिमा में जो शिक्षा व्रतों में सामायिक थी उस वो सातिचार थी, अब तीसरी प्रतिमा में वो सामायिक निरतिचार हो गई, तीन बार करने लगे। शिक्षा व्रत में दो बार करते थे, अब तीन बार करने लग गए, तो तीन बार सामायिक करने लगे और फिर कृतिकर्म के साथ करने लगे। सामायिक प्रतिमा हो गई और समता भाव का अभ्यास बढ़ाने लग गए, और बढ़ाते बढ़ाते फिर कषायें भी शांत होती, जैसे समता बढ़ती है तो जो विषमता है वो घटती है, विषमता घटेगी तभी तो समता बढ़ेगी, तीसरी प्रतिमा होगी। चौथी प्रतिमा में प्रोषदोपवास के जो अतिचार दूसरी प्रतिमा में लगते थे, तीसरी प्रतिमा में उसको छोड़ दिया, निरतिचार प्रोषदोपवास कर रहे हैं अष्टमी और चतुर्दशी को, और अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्ति मणि गुह्य, अपनी शक्ति को न छिपा कर करने को कहा है। अगर शक्ति नहीं है तो बात अलग है, फिर उसके भेद भी किए हैं आचार्यों ने, उत्तम मज्ज जहर्णम तिव्यम पोष व्याण मुद्दिठम, तीन प्रकार के प्रोषद के अनुष्ठान बताए हैं। उनमें तीन में प्रोषद में सबसे पहला तो ये है कि आप अष्टमी और चतुर्दशी को पूरा उपवास करो, निर्जल उपवास करो, और सप्तमी और तेरस की रात को जागो, स्वाध्याय करते हुए जागो, कुछ ऐसी वचनिका करो, कुछ ऐसी कथा ले लो, कोई ऐसा विषय ले लो स्वाध्याय का कि रात भर आप जागते रहो। ये उत्कृष्ट विधि बता रहे हैं जिसमें 48 घंटे तक धर्म ध्यान लगातार करना होता है, दुकान व्यापार धंधा आदि सब छोड़ करके, ये 48 घंटे की अवधि, चौथी प्रतिमा की बात है। तो उतनी उत्कृष्ट विधि करनी हो तो ये, जितनी शक्ति है उतना ही करना है। तो उत्कृष्ट विधि की ऐसी है कि अपन सप्तमी को दोपहर में आहार का त्याग कर दिया, एक बार भोजन लिया, और उसके बाद शाम के भोले बेला का त्याग किया, कल की दो बेलाओं का त्याग किया, और परसों की जो बेले आएगी, चौथी बेला कहलाएगी यहाँ से, उसमें आहार लेना पर गुरु को दे करके, ये विधि है। तो इसमें दो रात जागरण होता है, सप्तमी की रात और अष्टमी की रात। और इसमें एक नियम और है कि आप पूजा करोगे तो प्रासुक द्रव्यों से ही आपको पूजा करनी होगी, जब तक पारणा नहीं हो जाता तब तक आपको प्रासुक द्रव्यों से पूजा करनी होगी। तो प्रासुक द्रव्यों से पूजा आप करेंगे तो अष्टमी के दिन भी करेंगे और नवमी के दिन भी करेंगे, क्योंकि नवमी को सुबह सुबह थोड़ी फटकार लोगे भोजन नवमी के दिन आप भगवान की पूजा कर लो, गुरु को आहार दे दो, फिर बाद में भोजन। अब इसलिए क्या है कि अपने एक एक श्रावकों का विवेक है कि नवमी के दिन कम से कम साधुओं को आहार दान थोड़ा जल्दी दे दे, तो उनको अपने पारणा में थोड़ा सा राहत मिल जाए। ये सारी बातें ठीक है, काल की स्थिति है। तो ये चौथी प्रतिमा होगी, निर्दचार रखना। और अतिचार कौन से हैं प्रतिमा के? बिना देखे शोधे मलमूत्र का विसर्जन करना, बिना देखे शोधे चटाई आदि के बिछाना, उपवास में शिथिलता आ जाती है ना, तो कई बार एकदम अपन थोड़ी सुस्ती हो जाती है, प्रमाद हो जाता है, देख शोध करके काम नहीं कर पाते, तो उसको अतिचार का वो उसमें चौथी प्रतिमा में आपको उसको टालना है। और बिना देखे शोधे अरहंत भगवान के और आचार्य परमेश्वरियों की पूजा के जो उपकरण हैं, और उपकरणों के नाम जो लिखे हैं उसमें, अर्हदाचार्य पूजोपकरण से गंध माल्य धूपादेहे अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित आदानम, उपकरणों को पूजा की जो सामग्री उसको शोधे बिना अगर आप पूजा में प्रयोग में लाते हैं तो फिर वो अतिचार कहलाता है, और वो चौथी प्रतिमा में नहीं चलता। दूसरी प्रतिमा में ही बता दिया है कि अतिचार है, तुम सावधानी रखना। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि ये जो उपकरण है, क्या क्या उपकरण, उनने नाम दिए, उनने कौन से द्रव्य, गंध माल्य यानी पुष्पमाला और धूपादि, आदि में फिर सारे द्रव्य ले लो, तो उनको शोध करके आपको वो करना है। तो इस तरह ये एक चौथी प्रतिमा का स्वरूप। पांचवी प्रतिमा में क्या है कि आपको जो भी आप भोजन कर रहे हैं उस भोजन को जीवित अवस्था में नहीं लेना है, अर्थात उस भोजन को सचित्त अवस्था में ग्रहण नहीं करना है। सचित्त अवस्था का अर्थ होता है कि कोई वनस्पति है, कई बार इमली के पत्ते खट्टे खट्टे होते हैं, और कोई इमली के पेड़ के ऐसे नीचे से निकला और ऐसे पत्तियां तोड़ करके मुंह में डाल लेते हैं, कई बच्चे करते हैं ऐसा, प्राय होता है ऐसा। तो वो अभी टूटने की गिरने की स्थिति में नहीं था, वो अभी उस वनस्पति से जुड़ा हुआ था, उसके आत्म प्रदेश उस पत्ते के अंदर व्याप्त थे, और आपने ऐसे तोड़ करके उसको मुंह में डाल दिया, भले जीव घात नहीं हुआ क्योंकि वो प्रत्येक वनस्पति है और इस पत्ती में रेशे बने हुए हैं, इसलिए पत्ती का कोई अलग स्वामी नहीं है, वो वृक्ष का जो स्वामी जीव है उसी के प्रदेश इसमें पत्ती में थे, तो उसको तोड़ने पर जीव का घात तो नहीं हुआ, लेकिन सचित्त अवस्था में आपने उसका सेवन किया क्योंकि उसमें उसके प्रदेश अभी भी हैं, उस पत्ती में अभी भी उस वनस्पति के आत्म प्रदेश हैं, तो उनका सेवन करने का त्याग करना होता है। कौन सी प्रतिमा में? पांचवी प्रतिमा में। तो उसके लिए उन्होंने बताया, सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल डबणी हिमिस्यम दव्यम जंतेणियजम छम छिन्नम तम सव्वम फासुयम बणियम, सब कुछ प्रासुक ही लेना होता है जीवन भर, उसके बाद आप अप्रासुक नहीं ले सकते। चौथी तक ले सकते थे, कभी कैसी परिस्थिति आ जाती थी, तो अब पांचवी से नहीं लेना है। अब जब पांचवी से सचित्त का त्याग हो गया तो फिर साधु आदिक का तो फिर कहना ही क्या, वो कैसे ले सकते हैं, कोई सचित्त वस्तु तो लेंगे ही नहीं। अब कई बार लोग पूछते हैं कि भाई धनिया पत्ती वगैरह जब डालते हैं ऐसे दाल वगैरह में या फिर किसी चीज में, तो फिर वो सचित्त नहीं हो जाता क्या? चौके में डाल करके देते तो हैं साधु को, और साधु भी ले लेते हैं। तो उसका समाधान ये है कि वेदना समुद्घात का काल सिद्धांत की अपेक्षा अंतर्मूर्त है, और जब वनस्पति से कोई अवयव उसकी पत्ती फल फूल कुछ भी अलग किया जाता है अकाल में, यानी अभी उसको पृथक होने का समय नहीं आया लेकिन आपने अलग कर लिया, तो अलग करने के बाद अंतर्मुहूर्त तक उस मूल वनस्पति के जो आत्म प्रदेश है वो इससे जुड़े रहते हैं, और वो वेदना समुद्घात उसका चलता रहता है, उसके बाद फिर वो सिमट करके उधर चले जाते हैं। तो वो धनिया पत्ती कितनी देर पहले तोड़ी गई है खेत से, कितने घंटों पुरानी है, तो ये उसका समाधान है कि उसके प्रदेश लौट चुके हैं वहां, इसलिए वो सचित अवस्था में नहीं है। फिर भी शोधन करके देना श्रावक का कर्तव्य होता है। तो एक कालावधि के पश्चात वो सजीव वनस्पति भी जिसमें उसके आत्म प्रदेश है वो निर्जीव हो जाती है, भले हरी भरी है लेकिन वो जीवित नहीं है, ये बात समझने की। तो सचित्त त्याग प्रतिमा में ये पांच प्रकार के प्रासुक होते हैं जिनको ग्रहण किया जाता है। सूखा हुआ पदार्थ है तो सूखी हुई वस्तु को प्रासुक कहते हैं। पकी हुई कोई वस्तु है जो अग्नि पर पकाई गई है, दो प्रकार के पक्व बताएं श्रावकाचार्य संग्रह में कि अग्निपक्व और कालपक्व। जो फल आम का फल पेड़ पर पक गया तो आप उसके डंठल को देखना, क्या होता है कि उसके अंदर की चीज देखकर मुंह में डालने की सबसे पहले इच्छा होती है। डंठल तो कई बार बाजार में आने वाले आम में मिलता भी नहीं, पर कभी किसी पेड़ पर आम का फल लगा हुआ और पका हुआ तो उसके डंठल को देखना आप कैसा होता है, वो मुरझाया हुआ होता है डंठल। और मुरझाया हुआ डंठल इस बात का प्रतीक है कि अब उस वृक्ष के साथ इसका नाता टूट चुका है, भले ही वो लटका है उसमें, क्योंकि वो तंतुओं का भी एक संबंध होता है ना, पुद्गल का भी अपना काम होता है। तो वो जो आम है उसके आत्म प्रदेश लौट चुके हैं पेड़ में, वो निर्जीव है। उसके आश्रित जीव अलग हो सकते हैं लेकिन अपने आप में वो आम अभी वनस्पति काय है, वनस्पति कायिक नहीं है। तो उस आम को पांचवी प्रतिमाधारी ले सकता है, पक्कम प्रासुक के एक भेद में आ गया। तत्तम और तीसरा भेद है तप्त, तपा हुआ, जो भुट्टा होता है मकई होती है उसको क्या करते हैं, उसको सुखाता है क्या, वही उसको कोई उसकी सब्जी बनाता है क्या, उसको अग्नि पर सेका जाता है उसको तप्त बोलते हैं। तो तपी हुई वस्तु को भी प्रासुक बताया गया है, सुक्कम पक्कम तत्तम और अम्बिल लवणी ही मिस्यम दबम, मिर्च मसाले और फिर खटाई वगैरह से मिश्रित कोई पदार्थ है वह भी प्रासुक होता है। और अंतिम जो पांचवा प्रासुक है वो क्या है, तो आचार्य कहते हैं जंतेण यजम छिन्नम, यंत्रों से जो जैसे किसनी होती है उसमें से आपने छीन लिया, कोलू में गन्ने को पेल दिया और उसमें से रस निकाल लिया, अथवा कपड़े में अनार के दाने निचोड़ दिए, सेब के सेब का रस निकाल दिया, तो यंत्रों से जो छिन्न भिन्न हो गई वनस्पति वो भी प्रासुक होती है। तो इस तरह पांच प्रतिमाओं का वर्णन आज अपन ने सुना है, इसके बाद आगामी सत्र में और आगे देखेंगे। जय नम जय तु शासन। एक प्रश्न आता है कि अग्निपक्व को ही प्रासुक मानने में क्या हानि है, तो उसका उत्तर यह है कि अग्निपक्व को प्रासुक मानने पर जो प्रासुक द्रव्यों से पूजा करने को लिखा है तो आठों द्रव्यों को अग्नि पर पकाना पड़ेगा तब वो प्रासुक होंगे, और ऐसा संभव ही नहीं है। ओम नमः।